आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये जो अभी धौला पुस्तक दसवीं में चतुर्थ वेदना खंड वेदना अनुयोग द्वार अपना चल रहा है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 57 पर आ गए, 57। क्या? हाँ, विशेषार्थ हम बीच का छोड़ के आगे गए थे, अभी अभी क्रम से पढ़ेंगे, क्योंकि विशेषार्थ को हम थोड़ा तो देख चुके हैं, जहाँ जो बात आई फिर उसको देखेंगे। देखो, नीचे का समाधान पढ़ना है, पर वो कौन से शंका का समाधान है, तो शंका दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि सूत्र तो 28 नंबर का ऐसा था, सूत्र की भी बात पढ़ लेते हैं। 28 नंबर का सूत्र अर्थ वाला, इस प्रकार भ्रमण करके हमने वो जो पहला पृथ्वी कायिक से शुरू किया था वो जीव, तो कर्म स्थिति में साधिक 2000 सागर बाकी रहे तो वो त्रस पर्याप्त, बादर त्रस पर्याप्त में आया, फिर वहाँ क्या क्या, वो 6 आवास हमने देखे, और अंतिम अंत की ओर वो 7वें नरक का नारकी हुआ, उसमें भी बहुत बार नारकी हुआ वगैरह वगैरह बातें देखी थी, और उस भव में भी हमने 3 आवास देखे थे, योग ज़्यादा होता है वगैरह, संकलेश ज़्यादा होते हैं, अपर्याप्त काल छोटा होता है वगैरह बातें हमने देखी थी। और 28 नंबर के सूत्र में अब बताते हैं, इस पर प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रहने पर, अभी उनकी वहाँ की आयु थोड़ी बाकी रहने पर, योग यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहा, यानी लगातार ज्यादा समयों तक जो योग होता है उसकी बात चल रही है। अब उस ये अभी उस पर शंका समाधान चलेगा, विशेषार्थ चलेगा कि योग यव मध्य किसको कहना। यव ने वो यव नाम का जो अनाज है, जैसे हम गेहूं के साथ तुलना करेंगे, बीच में ज्यादा जाड़ा होता है, मोटा होता है, और टेपरिंग होता है, दोनों ओर कम होता है, वैसे यहाँ जो रचना बताई है तो लगातार 2 समय या 3 समय या 4 समय या 8 समय तक उसी योग में रहने का कितना काल है, बाद में जिसमें परिवर्तन होता है, कम या ज्यादा होता है, क्योंकि ये परिणाम योग स्थानों की बात चल रही है। उपपाद योग स्थान तो एक समय का ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन की अपेक्षा ही नहीं है। एकांत अनुवृद्धि में प्रति समय असंख्यात गुणी वृद्धि होती है, यानी एक एक समय में वो परिवर्तन होता ही होता है। परिणाम योग स्थान ऐसे है कि 2 समय तक वही का वही चले, या 3 समय तक चले, या 8 समय उन तक भी चले, तो कितने समय तक रहता है उसकी अपेक्षा से यहाँ 8 समयों वाला बीच में लिखेंगे, 7 समय वाले उसके बाजू बाजू में लिखेंगे, तो वहाँ कितने योग स्थान है, 8 समय लगातार रहने वाले योग स्थान कितने होते हैं, फिर वो संख्या कम से कम होती है, काल ज्यादा से ज्यादा है, काल की अपेक्षा यव मध्य कहा, परंतु वो योग स्थान है उनकी संख्या वहाँ कम है, उससे असंख्यात गुणा 7 समय वाले है, उससे असंख्यात गुणा 6 समय वाले, ऐसे वो 2 तक असंख्यात गुणा क्रम से है। अब यहाँ बात हम आगे बढ़ेंगे, शंकाकार क्या पूछ रहा है, यहाँ द्विंद्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य योग स्थान से लेकर, ये पर्याप्तों के योग स्थान यानी यहाँ परिणाम योग स्थानों की ही बात है, क्योंकि उपपाद और एकांत अनुवृद्धि जो है वो अपर्याप्त काल में बीत जाते, अभी वो परिणाम योग स्थानों की बात है। तो जघन्य से लेकर अवस्थित प्रक्षेप उत्तर क्रम से, यानी फिक्स वृद्धि, यानी उतनी 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 वृद्धि लगातार होते जाएगी, तो उतनी वृद्धि होने पर दूसरा स्थान, फिर उतनी ही वृद्धि होने पर तीसरा। किसकी वृद्धि? योगों की। यानी कम से कम योग के से लगाकर थोड़ा अधिक योग, थोड़ा अधिक योग, ये जो थोड़ा अधिक है उसका प्रमाण उतना का उतना रहता है। ध्रुव वृद्धि भी कहते हैं हम उसको। ऐसे क्रम से उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक, ये उत्कृष्ट परिणाम योग संगी पंचेंद्रियों का उत्कृष्ट योग, वहां तक प्राप्त हुआ जितना भी योग है, यानी योग के जितने भी स्थान हैं अलग अलग, जो कि पहले दुगुण वृद्धि स्थान से अब ये लगातार थोड़ा 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 बढ़ता है। जैसे हम 100 से शुरू करेंगे, थोड़ा 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 5-5-5-5 से बढ़ेंगे, तो ये 100 से 105 हुए, फिर 110 हुए, ऐसे करते करते कभी ना कभी वो 200 भी हो जाएंगे ना, तो ये दुगुण वृद्धि हुई। फिर और 5-5-5 से बढ़ते 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 फिर चतुर्गुणी वृद्धि होगी। इस तरह से ये दुगुना 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 बढ़ते चला जाएगा। ऐसे उत्तरोत्तर गुणवृद्धि, गुणवृद्धि यानी गुणित प्रमाण से वृद्धि। पहले तो हमने अवस्थित वृद्धि देखी, परंतु बीच में कुछ स्थान अवस्थित वृद्धि के जाने पर गुणित वृद्धि के स्थान भी आएंगे। जैसे हमने 5 और 100 का देखा था, 5-5 से बढ़ते हुए 100 है, वो 200 हो जाएगा कभी ना कभी, तो ये दुगुण वृद्धि हुई। अभी हम बीच के 5-5 के छोड़ जाएंगे, तो 100 हुआ, फिर 200 हुआ, कहीं पर 400 हुआ, कहीं पर 800 हुआ, तो ये हम दुगुण वृद्धि कहेंगे उसको। यानी गुणित प्रमाण में भी वृद्धि होती है, ऐसा होने पर गुणवृद्धि रूप स्थानों को प्राप्त है। और जो हाथी के शुंडा दंड के आकार का है, क्रम से वृद्धि को प्राप्त है, तो छोटे से बड़े तक होता जाए, तो हाथी की जैसे सूंड है, नीचे छोटी है और ऊपर हम देखते हैं तो बड़ी होती जाती है, इस तरह के आकार का है, तो यह योग यवाकार कैसे हो सकता है? यव यानी पहले कम, फिर बड़ा, फिर कम होना, तो शंकाकार ने यवाकार की जो बात है वो योग कितना है उसकी अपेक्षा से ही समझा है, परंतु उसकी अपेक्षा से यवाकार नहीं है, वो अभी समाधान में कहेंगे। जब वह यवाकार नहीं है तब उसका मध्य भी संभव नहीं है। छोटे से बड़े तक हम लगातार, जैसे हम स्कूल में हाइट की अपेक्षा यानी ऊंचाई के क्रम से वो तो ऐसे खड़े रहते थे ना, छोटे यानी शॉर्ट वाले आगे और फिर लंबे वाले वो पीछे, ऐसे अगर कतार में खड़े रहते तो उसका मध्य कैसे कहेंगे हम? यवाकार उसका हो ही नहीं सकता, जैसे बीच में बड़े और फिर दोनों ओर कम कम, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो वस्तु असत है उसका मध्य मानने में विरोध आता है। जो यव के समान वहां रचना ही नहीं है तो उसका मध्य कैसे हो सकता है? ये पूरी तो शंका हो गई, अब उसका समाधान। यहाँ उक्त शंका का उत्तर कहते हैं, वह इस प्रकार है। द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान तक के सब योगों को ग्रहण करके एक पंक्ति में स्थापित करने पर उन सब योग स्थानों का आयाम यानी उनका प्रमाण, एक 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 ऐसे हम साथ में रख देंगे तो कितना होगा? तो कहते हैं जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है। उनमें से सबसे जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर, यानी पहले नंबर वाला ले, वहां से लेकर आगे के जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र योग स्थान 4 समय प्रायोग्य है। यानी वहां जो योग स्थान है वो लगातार 4 समय तक वे ही चलते रहे, ऐसी उनमें योग्यता है, वे प्रायोग्य कहा। फिर इससे आगे के जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र योग स्थान 5 समय प्रायोग्य है। अभी जो हमने एक लाइन में इतने सारे खड़े किए थे, मान लेते 1000 है, तो हम कहेंगे कि पहले इतने 100 है वो इतने ऐसे 4 समय वाले है, आगे के 100 है तो 5 समय वाले, जो कुछ है, अब उनका प्रमाण सेम नहीं है, फिर भी पहले कुछ योग स्थान 4 समय के योग्यता वाले हैं, आगे वाले वो कंटिन्यूस पांच समय लगातार पांच समय वही योग हो, बाद में परिवर्तन हो, ऐसे वे आगे के पांच समय वाले हैं। इस प्रकार परिपाटी क्रम से आगे के पृथक पृथक छ सात व आठ समय प्रायोग्य योग स्थान प्रत्येक जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र हैं। फिर भी उनमें जो असंख्यात का प्रमाण है वो अलग अलग है, जो बाद में बताएंगे। फिर इससे आगे यथाक्रम से, यानी वो क्रम से आठ समय तक के हो गए ना, हमने कहाँ से शुरू किया था, ये द्विंद्रिय अपर्याप्त से, ये पर्याप्त से लगाकर उसके जो योग स्थान है हमने देखा था, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बढ़ते हुए योग स्थान हमने ऐसे देखे थे, अब ऐसा ट्रायंगल दिखाएंगे। तो पहले कुछ जो योग स्थान है यहाँ के सभी चार समय के योग्यता वाले, उसके आगे वाले पांच समय की योग्यता वाले, उसके आगे वाले छह समय के, सात समय के, और यहाँ के आठ समय, ये आठ समय वाले हैं, इसके आगे के फिर सात समय वाले, फिर छह समय वाले, पांच समय वाले, और चार तीन और दो समय प्रायोगिक योग स्थान प्रत्येक जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र है। सभी जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग, हर एक का प्रमाण असंख्यात ही है, फिर भी आठ समय वाले जितने असंख्यात है उससे सात समय वाले असंख्यात असंख्यात गुणे हैं। यहाँ आठ समय प्रायोग्य योग स्थान थोड़े हैं, दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित सात समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुणे हैं, दोनों ओर असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे हैं। दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित छह समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुणे हैं, और दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित पांच समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुणे हैं, दोनों ही पार्श्व भागों में स्थित चार समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुणे हैं। अब चार समय तक दोनों ही ओर चार समय वाले हैं, परंतु हमने चार कहां से शुरू किया था, द्विंद्रिय की ओर से शुरू किया था। अब ये तीन और दो किस ओर चले जाएंगे, पंचेंद्रिय की तरफ चले जाएंगे। ऊपर ऊपर लिखा ना, ये जघन्य को नीचे लिखा था, ऊपर तीन समय प्रायोग्य योग स्थान असंख्यात गुणे हैं और दो समय प्रायोग्य योग स्थान उससे भी असंख्यात गुणे हैं। गुणकार सर्वत्र पल्योपम का असंख्यातवा भाग है, कथन तो वैसा ही होगा असंख्यात असंख्यात, फिर भी हर एक की जो अपनी अपनी वैल्यू वो अलग है। लगातार चार समय का है, चार समय के बाद उसका परिवर्तन होगा, क्योंकि हर एक में भी जगन्य उत्कृष्ट ऐसे वेरिएशन है। नहीं नहीं नहीं, आठ से कम होगा ना। देखिए हमने द्विंद्रिय पर्याप्त में वो आठ समय वाले ही होंगे, वो तो वो कम ज्यादा हो जाए, सात वाले हो जाएंगे, छह वाले, यानी योग उसका बदलते चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वृद्धि होती है ना, द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक वृद्धि होती है, परंतु एक जीव की अपेक्षा हानि वृद्धि होती रहती है। ऐसे अभी तो हमने कितने समय की अपेक्षा उसके योग स्थान देखे, अभी इसमें ऐसा भी होगा ना, द्विंद्रिय के योग स्थान कहाँ से कहाँ तक है, तीन्द्रिय से कहाँ तक है, हर एक की अपनी अपनी रेंज अलग है, उसकी अपेक्षा अभी नहीं चल रही अपनी, अभी तो इतना ही है, चार समय में परिवर्तन करने वाले कितने हैं ऐसा है, इतनी ही अपेक्षा यहाँ लगाई है। हाँ वो तो जनरल तो है ना, क्योंकि ये जघन्य की ओर वो द्विंद्रिय वाले योग है और उत्कृष्ट वाले हैं वो पंचेंद्रिय, तो द्विंद्रिय की कोई रेंज होगी, तीन्द्रिय की कोई रेंज होगी, तो उस अपेक्षा से अगर रेंज अलग अलग कहेंगे, उसका भी वर्णन है शास्त्र में, द्विंद्रिय के कितने स्थान तक द्विंद्रिय के हैं, तीन्द्रिय के कितने हैं, हर एक की अपनी अपनी रेंज। यहाँ तो अपना फक्त अपना क्राइटेरिया अभी काल का ही लग रहा है, उतनी ही बात चल रही है, उसी की अपेक्षा ये वो मध्य कहा है, यानी वो चार समय वाले द्विंद्रिय में भी देखे, वो चार समय वाले वहाँ पंचेंद्रिय में भी हो गए। तो आठ से लेकर वो सब जो है सब वेरिएशन सब में हो गए। हाँ, यहाँ अभी हम 59 पेज पर है, 59 पर। यहाँ इन योग स्थानों का वो र अर्थ एक कर देना, स्था कर देना उसको। यहाँ इन योग स्थानों का विशेषणभूत काल, अभी काल की अपेक्षा वर्णन है ना, उसका विशेषण क्या है, काल। अभी हम उसको कहेंगे आठ समय वाले, सात समय वाले, ये उसको विशेषण लगाएंगे उसके पीछे। वो योग कितना है उसकी यहाँ बात नहीं है, किसका है उसकी बात नहीं है, काल की अपेक्षा लगाइए। तो विशेषणभूत काल अपनी संख्या की अपेक्षा, अपनी संख्या ने दो से लेकर आठ समय, ये उसकी संख्या, काल की संख्या यवाकार हो जाता है। ये काल ही यवाकार होता है, दो समय, तीन समय, चार समय, आठ समय तक, और फिर घटता हुआ नीचे की ओर चार समय तक, इसको यवाकार कहा। क्योंकि वह मध्य में तो स्थूल है और दोनों ही पार्श्व भागों में क्रम से हानि होती गई है। पार्श्व भाग यानी दोनों साइड में, दोनों बगल में। हाँ, आगे ने ऊपर की ओर। हाँ, ये पंचेंद्रिय में ही होगा वह। हाँ, पंचेंद्रिय की ओर, यानी चार अभी हमने उन्होंने बताया ना, चार समय से शुरुआत हुई है, यानी द्विंद्रिय में वो चार समय पांच में ऐसा शुरू हुआ। हाँ, वो द्विंद्रिय में नहीं है। अब यहाँ बताया, देखिए चार पांच छह सात आठ, और फिर क्रम से हानि है, सात छः पाँच चार तीन दो। इस प्रकार इन चार आदि समयों से विशेषित योग स्थान भी ग्यारह प्रकार का है। इसको गिनना आप कितने हैं, यहाँ ये एक दो तीन चार, इस बाजू आठ की इस बाजू चार, और उस बाजू एक दो तीन चार पाँच छः, और बीच में आठ। अन्यथा वह काल का विशेष नहीं बन सकता, क्योंकि योग से पृथकभूत काल नहीं पाया जाता है। यानी काल ये योग का विशेषण बनाया, उससे भिन्न नहीं है। यहाँ योग को ही यव कहा है, और उसका मध्य योग यव मध्य कहलाता है। वो आठ समय वाला जो योग के स्थान है उसको योग यव मध्य कहा। आठ समय वाला योग की ही बात है ना, वहां पर भी समय उसका विशेषण बना दिया। आठ समय तक जो अवस्थित रहता है ऐसे योग स्थान, उसको यव मध्य कहा। यव मध्य से आठ समय वाले योग स्थान लिए जाते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जो आठ समय वाले हैं वो योग के मध्य में स्थित है, योग यव मध्य कहते हैं। उस यव मध्य के ऊपर नव योगों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण योग स्थानों में, यव मध्य के ऊपर नौ, अंतर्मुहूर्त काल तक स्थित रहा, क्योंकि वहां चार वृद्धियां और चार हानियों की संभावना देखी जाती है। देखो वृद्धि हानि, तभी तो उसको परिणाम योग स्थान कहा है। मेरे ख्याल से मध्य ने सात आठ सात लिए कि उसमें ग्यारह में से भी नौ लिए, आगे वाले कितने लिए, उस योग मध्य के ऊपर नौ योग। छह से दो तक पता नहीं, जो कोई पंचेंद्रियों में हो गए वही वहां लेना पड़ेगा। यानी उसमें अधिक ऊपर की ओर ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर उत्कृष्ट से योग स्थान है, योग यव मध्य के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ज्यादा रहा। क्योंकि पंचेंद्रियों को लेना है और उसमें भी उत्कृष्ट योग स्थान वाले लेना है। तो यव मध्य के ऊपर नव योगों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण योग स्थानों में अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा। वो तीन समय रहा के दो समय रहा उसकी बात नहीं, यव मध्य के ऊपर की ओर जो है वो उत्कृष्ट योग है, क्योंकि वो पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट की तरफ वाले योग स्थान। हमने क्रम से देखे ना, ऐसे क्रम से देखे, चार वाले, पांच वाले, छह वाले, सात वाले, फिर आठ वाले, और उसके ऊपर सात छह, वो उत्कृष्ट योग वाले ही है ऊपर की ओर। मध्य के ऊपर की ओर जो है वो उत्कृष्ट योग है, और मध्य के नीचे की ओर है वो जघन्य योग है, इतना लेना उसमें। तो योग ये वो मध्य के ऊपर की ओर ज्यादा अंतर्मूर्त तक, भले उसमें वेरिएशन होगा, कभी तीन समय में पलटेगा, कभी दो समय में पलटेगा, परंतु ये सारे उत्कृष्ट योग स्थान है उसमें अधिकतर काल बिताया। प्राकृत में हाँ, देखो देखो हम देखते हैं, जोगो चेव जगो जोग जवो तस्समझम जोग जव मझम अठ समये योगठानाति उत्तम होदी तस्स उवरी। ये लिखा ना अभी नीचे अर्थ किया कि यो मध्य जब कहते हैं तो आठ समय वाला योग स्थान समझना। तस्स उवरी यानी उसके ऊपर, यानी यव मध्य के ऊपर आठ वाले जो स्थान है उसके ऊपर, यानी आठ वाले को छोड़कर उसके ऊपर। तस्स उवरिम जोगठानेसु सव जोगठानानम असंख्यज्य जुभाषेसु अंतो मुहूर्तधम अच्छिदो। उस यव मध्य के ऊपर सव जोगठानम असंख्यज्य, उवरिम योग ठानेसु, उवरिम ऊपर, उवरिम है ऊपर के योग, योगों के
सर्व योग स्थान
वो सर्व जो है आगे लिखा है असंख्यात बहुभाग प्रमाण सर्व योग ठानानम असंख्य जेजु भाषेसु। ये ऊपर नव योगों के जो भाषांतर है वो तो क्योंकि लिखा है, देखो तस्स उवरी उवरिम योग ठानेसु, और यहाँ योग लिखा है वहाँ योग स्थान लिखा है। देखो उस यव मध्य के ऊपर तस्स उवरी उवरिम योगठानेसु ऊपर के योग स्थानों में, ऐसा उसका भाषांतर होना चाहिए। हाँ ऊपर तो लिखा ही है, उवरिम का अर्थ ऊपर, उपरिम योगठानेसु ने योग स्थानों में प्रीम योग स्थानों में, या योग स्थानों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण योग स्थानों में उपरिम योग स्थानों के नव योगों के बदले क्या है लिखना, नहीं नहीं सर्व की बात नहीं, ऊपर उपरिम योग ठाने सु, अच्छा सर्व भी चलेगा, सर्व योग स्थानों के असंख्यात बहुभाग प्रमाण, ठीक है सर्व योग स्थानों के, योगों के लिखे ना, सर्व योग स्थानों के यानी उसके ऊपर के जो सब योग स्थान है वो सब योग स्थानों के असंख्यात सब, हाँ
सर्व
या सब योगों के बदले योग स्थानों के
सब,
सब चाहिए। हाँ उस यव मध्य के ऊपर आठ समय वाले जो सेंटर में जो कुछ है हमने वहां देखे थे, उसके ऊपर की ओर वाले योग स्थान लेना, क्योंकि वो अधिक योग वाले हैं, उत्कृष्ट योग की तरफ वाले हैं। उसमें से असंख्यात बहुभाग प्रमाण योग स्थानों में अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा, कभी दो समय वाला हुआ, कभी तीन चार, वो जो कुछ है वो क्योंकि वहाँ चार वृद्धियाँ और चार हानियों की संभावना देखी जाती है। कौन से वृद्धियाँ और हानियाँ होगी मंजुबेन, आप कहेंगे? हाँ, नहीं वो नहीं, उसकी हानि वृद्धि बताए। अभी ऊपर की ओर है वो, यवो मध्य के ऊपर की ओर है, यानी ये जो इसकी ओर ही है। तो चार वृद्धि हानि कौन सी? हाँ 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 बोलो। देखो षडगुणी हानि में हम अनंत से शुरुआत करते हैं। अभी योगों में अनंत आता ही नहीं है, योगों के अविभाग प्रतिच्छेद असंख्यात से ही होते हैं। कर्मों की जब जब बात होगी तो अनंत का उसमें आएगा, फिर उसमें अनंत गुण वृद्धि अनंत, ये पहले अनंत भाग वृद्धि से शुरू करते हैं। या ज्ञान मार्गणावी जो हमने ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद देखे थे वो भी अनंत में शुरू होते हैं, तो अनंत भाग वृद्धि फिर असंख्यात भाग वृद्धि। अभी यहाँ असंख्यात से शुरू करना है तो असंख्यातवा भाग बढ़ जाना उसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। जैसे मूल संख्या असंख्यात है उसको किसी अन्य असंख्यात से भाग देंगे, जो प्रमाण आएगा तो वो मूल में मिला देना, तो उसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि हुई। फिर संख्यात भाग वृद्धि यानी संख्यात से भाग देना तो संख्या बड़ी आएगी, वो मूल फिगर में मूल संख्या में मिला देना, उसको कहेंगे संख्यात भाग वृद्धि। अब उसके बाद संख्यात गुण वृद्धि हुई, संख्यात गुण वृद्धि में दो गुणा चार गुणा दस गुणा ये संख्यात गुणा वृद्धि का स्थान होगा, संख्यात बढ़ता चला जाएगा। और फिर असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा बढ़ेगा। तो चार ये तो वृद्धि के और हानि के दोनों के स्थान उसमें, क्योंकि परिणाम योग स्थान यानी वृद्धि हानि होती रहती है, तो ये अलग अलग ऐसे वृद्धि हानि वहां होती रहेगी। अब शंका, अंतर्मूर्त काल रहकर चार वृद्धि हानियां वहां हुई ऐसे आचार्यों ने बताया। अब शंकाकार पूछता है, चार वृद्धियों और चार हानियों का काल अंतर्मूर्त है यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि का काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि अभी कोई परिवर्तन हुआ तो आगे वाला जो उसका योग आया ना, जैसे आठ समय वाला था या सात समय वाला था तो सात समय ही लगातार रहा, फिर उसमें वृद्धि होकर वो अन्य में चला जाएगा। अभी काल की अपेक्षा हम छोड़ देते हैं, तो उसमें वृद्धि हुई तो कितनी होगी? शुरू में असंख्यात भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग ऐसे करते 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 कुछ समयों बाद वो तो संख्यात भाग वृद्धि ऐसे करते, अंतिम स्थान कौन सा है उसका वृद्धि का? असंख्यात गुण वृद्धि। तो इतना करने के लिए उसको अंतर्मूर्त लगेगा। असंख्यात भाग वृद्धि करने के लिए तो एक समय अगले समय में असंख्यात भाग की वृद्धि हो सकती है, परंतु असंख्यात गुण वृद्धि तक पहुंचने के लिए उसको अंतर्मूर्त लगेगा। वही बात हानि की ओर भी लेना, यानी एकदम जंप मारकर वो लास्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। तो असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि का काल अंतर्मूर्त है, तथा शेष वृद्धियों और शेष हानियों का काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये जो असंख्यातवे संख्यात भाग वृद्धि है या संख्यात गुण वृद्धि है उसमें, इस बंध सूत्र से यह जाना जाता है कि चार वृद्धियों और चार हानियों का काल अंतर्मूर्त है। फिर शंका, वहां अंतर्मूर्त काल तक किस लिए स्थित कराया? उसका समाधान, चूंकि यव मध्य से आगे के योग पिछले योग से बहुत पाए जाते हैं, ऊपर की ओर के है ना, और वो उत्कृष्ट की ओर वाले हैं, आगे के ने वो उत्कृष्ट की ओर वाले योग, उसमें योग ज्यादा है, और यव मध्य के नीचे की ओर है वो योग कम है, अतः वहां अंतर्मूर्त काल तक स्थित कराया है। अब ये पूरे का फिर दोबारा विशेषार्थ पढ़ते हैं जो हमने कल भी पढ़े। हाँ 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 अभी आगे और आने वाले हैं ना धवला के अभी बहुत। हाँ नहीं नहीं बंद सूत्र जो कहा ना उन्होंने वो जो अभी आगे के अभी आगे असंख्यात स्थान है ना आगे वाले नहीं उनका अलग प्रश्न है। उनका प्रश्न ये जो बंद सूत्र का यहाँ प्रमाण बताया तो कौन से जैसे अभी हमारा वेदना अधिकार चल रहा है वैसे ये जो बंद वाला जो कोई है उसमें वो सूत्र आया है। विशेषार्थ पढ़ेंगे कल हमने इसको थोड़ा पढ़ा था अभी फिर दोबारा पढ़ते हैं। प्रति समय मन वचन और काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेश परिस्पंद होता है उसे योग कहते हैं और इनके स्थानों को योग स्थान कहते हैं। स्थान यानी विशिष्ट अभिभाग प्रतिच्छेद युक्त जो उनके जो प्रदेश हो गए आत्म प्रदेश। अब कल देखा ना हमने उसमें वर्ग कहेंगे वर्गणा कहेंगे स्पर्धक कहेंगे ऐसी बातें क्योंकि सभी आत्म प्रदेशों में कुछ ना कुछ योग तो होगा ही बिना योग के कोई आत्म प्रदेश नहीं होगे। मध्य वाले 8 प्रदेशों में योग होगा कि नहीं होगा वो घूमते नहीं ऐसा है ना हाँ तो उसमें योग है कि नहीं। हाँ घूमना अलग है और परिस्पंद अलग है योग नहीं तो वो 8 प्रदेश मुक्त मानने पड़ेंगे हाँ? वो कर्मों का भी ग्रहण नहीं करेंगे क्या तो उसे योग कहते हैं। इनके स्थानों को योग स्थान कहते हैं। योग स्थान 3 प्रकार के होते हैं। योग स्थान यानी उसमें कितना डिग्री योग है उसको बताने वाले जो अलग अलग उसके जीव अलग जीवों में या एक जीव में अलग अलग समयों में जो अलग अलग उसके योग पाया जाता है उसको योग स्थान कहा है। वे 3 प्रकार के हैं उपपाद योग स्थान एकांत वृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। भव के प्रथम समय में स्थित जीवों के उपपाद योग स्थान होते हैं। इसके पश्चात शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने तक एकांत वृद्धि योग स्थान होते हैं। ये तो पर्याप्तों में उन्होंने बताया। यदि लब्धि अपर्याप्त जीव होता है तो आयु के अंतिम तीसरे भाग को छोड़कर उपपाद योग के बाद अन्यत्र एकांत अनुवृद्धि योग स्थान होते हैं यानी भव के अंत तक। इसके बाद शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के समय से लेकर यह हमने भव के आगे अंत तक लिखा था या लब्धि अपर्याप्त के अंतिम तीसरे भाग में परिणाम योग स्थान होते हैं। ये परिणाम योग स्थान द्विन्द्रिय पर्याप्त के पर्याप्त लिया ना क्योंकि अभी यहाँ परिणाम योग स्थानों को बताना है। द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य योग स्थानों से लेकर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट योग स्थानों तक क्रम से वृद्धि को लिए हुए होते हैं। योग बढ़ते हुए है द्विन्द्रिय पर्याप्त से लेकर संगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योग तक। इनमें 8 समय वाले योग स्थान सबसे थोड़े होते हैं। अब जो लगातार 8 समयों तक रहे ऐसे योग स्थानों की संख्या सबसे कम है। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित ये समयों की अपेक्षा हम उन योग स्थानों को दोनों ओर रखेंगे। वो किसके हैं पंचेंद्रिय के कि द्विन्द्रिय उसकी बात अभी नहीं लेना। उनका अभी विशेषण क्या 8 समय तक लगातार रहने वाले इतना ही लेना। दोनों पार्श्व भागों में स्थित 7 समय वाले योग स्थान असंख्यात गुने होते हैं। दोनों पार्श्व भागे ने भी हमने बीच में देखे ना ये कंटिन्यूस लिखे। अब सेंटर वाले ने ये 8 समय वाले मान लेते हमने यहाँ लिखे 8 समय वाले नीचे की ओर यानी द्विन्द्रिय की ओर और ऊपर की ओर यानी पंचेंद्रिय की ओर। वो 7 समय वाले यहाँ के भी असंख्यात गुण है और नीचे की ओर भी असंख्यात गुण है ऐसे ऊपर नीचे कहेंगे उसको। उनकी संख्या इनसे ज्यादा है। फिर दोनों ओर 6 समय वाले अभी पढ़ते हैं। देखो इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित 7 समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित 6 समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित 5 समय वाले योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इनसे दोनों पार्श्व भागों में स्थित चार समय वाले योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं। अब ये द्विंद्रिय से लेकर वहाँ तो चार समय वाले से ही शुरुआत की थी हमने देखा था। अब पंचेंद्रिय के ओर तीन समय वाले और दो समय वाले कहेंगे, और इनसे तीन समय वाले योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं और इनसे दो समय वाले योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं। ये सब योगस्थान चार पाँच छ सात आठ सात छ पाँच चार तीन और दो समय वाले होने से ग्यारह भागों में विभक्त है। अतः समय की दृष्टि से यानी काल की दृष्टि से इनकी यवाकार रचना हो जाती है। आठ समय वाले योगस्थान मध्य में रहते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में सात समय वाले योगस्थान प्राप्त होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में छह समय वाले योगस्थान प्राप्त होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में पाँच समय वाले योगस्थान प्राप्त होते हैं, फिर दोनों पार्श्व भागों में चार समय वाले योगस्थान प्राप्त होते हैं, फिर आगे के भाग में क्रम से तीन समय और दो समय वाले योगस्थान प्राप्त होते हैं। इनमें से आठ समय वाले योगस्थानों की यवमध्य संज्ञा है। आठ वाले को यवमध्य कहा, और यवमध्य के ऊपर ऊपर यानी ऊपर की ओर अधिक की ओर यवमध्य से पहले के योगस्थान थोड़े होते हैं और आगे के योगस्थान असंख्यात गुणे होते हैं। इसमें भी नीचे के जो है वो कम है, दोनों ओर के असंख्यात गुणे तो कहे, फिर भी नीचे की ओर से ऊपर की ओर के जो है वो असंख्यात गुणे होंगे। इन आगे के योगस्थानों में संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि, ये उल्टा क्रम लिया, संख्यात गुणवृद्धि और असंख्यात गुणवृद्धि, ये असंख्यात भाग वृद्धि पहले चाहिए, क्योंकि असंख्यातवा भाग छोटा होता है और संख्यातवा भाग बड़ा होता है। देखो हजार को सौ से भाग देंगे तो कितना होगा, दस। हजार को सौ से भाग दिया तो दस आ गए, और दस से भाग दिया तो छोटी संख्या से भाग देते तो भागाकर बड़ा आएगा। तो इसलिए यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि पहले स्थान पर चाहिए। नहीं, ये तो विशेष अर्थ है ना, पूरा इन्होंने ही बताया। तो फिर पढ़ते, इन आगे के योगस्थानों में असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, ये चारों वृद्धियां तथा ये ही चारों हानियां संभव है, क्योंकि परिणाम योगस्थानों में वो वृद्धि हानि होती रहती है। इसी से इन योगस्थानों में उक्त जीव को अंतर्मूर्त काल तक स्थित कराया है, क्योंकि योगस्थानों का अंतर्मूर्त काल यही संभव है। अब शंका, क्योंकि उन्होंने बताया था ना सूत्र में क्या बताई थी, योगस्थान के ये योग यो मध्य के ऊपर 28 सूत्र फिर दोबारा निकालना, 57 पेज पर है। देखो, इस प्रकार परिभ्रमण करके जीवन के थोड़ा शेष रहने पर अब अंत की ओर उसको बता रहे हैं। यवमध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा, जीवन के अंत की बात चल रही है, वह अंतर्मूर्त काल तक वहीं पर है, यानी उत्कृष्ट योग में रहे हैं अंत की ओर। अभी ऐसा जीव लेना है कि उत्कृष्ट जिसके संचय है वहां तक हमें वो बता रहे हैं। तो पहले पृथ्वी का एक बादर पृथ्वी का एक से शुरू करके फिर त्रस में भ्रमण करा के अंत में वो सातवें नरक का नारकी, उसके भी उत्कृष्ट वाले योग बहुत बार होते हैं, ऐसा लेकर मरण के समय को भी अंतर्मूर्त पहले की भी बात यहाँ ली। यवमध्य के ऊपर की ओर के अर्थ ख्याल है ना, उत्कृष्ट योग की तरफ वो अंतर्मूर्त तक रहा, क्योंकि लगातार एक ही योग स्थान पर वो अंतर्मूर्त नहीं रखा रह सकता, क्योंकि उसका उत्कृष्ट रहने का काल हमने देखा योग यवमध्य के ऊपर की ओर है, सात छः पाँच समय चार समय तीन समय ऐसा होगा उसका कुछ। तो अंतर्मूर्त तक उसी में वो हानि वृद्धि करता रहा। अब शंका, यहाँ फिर 60 पृष्ठ पर आते हैं। शंकाकार पूछता है, जोग जव मज्जादो, इस सूत्र का अर्थ कहते समय द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा योग यव मध्य संज्ञा वाले जीव मध्य से आगे के स्थान में अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा ऐसा क्यों नहीं कहते? जैसे योग यव मध्य और जीव मध्य, ये जीव मध्य स्थान ये कुछ अलग बात है। योग यव जिनकी संख्या है ऐसे जीव मध्य स्थान में क्यों नहीं लिया? यानी जीव योग मध्य स्थान, जीव यव मध्य, एक तो हमने देखा था योग यव मध्य, अब यहाँ कहते जीव यव मध्य, वो क्या है देखेंगे अभी। प्रश्न क्या है वो समझना। तो योग यव मध्य कहा, तो योग यव मध्य संज्ञा जिनकी है ऐसे जीव मध्य या जीव यव मध्य आगे के स्थान में अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा ऐसा क्यों नहीं कहा? ये शंकाकार की शंका है। अब उसका समाधान करते हैं। नहीं, क्योंकि जीव यव मध्य का आगे का स्थान पिछले स्थान से विशेष अधिक है। देखो प्रश्न हम देखते हैं, जोग यव मज्जादो एदस्स सुत्तस्स अथे भन्नमाने दौवठियणयम् बडुच्च जोग यव मज्ज सन्निद जीव जव मज्जादो। जीव यव मध्य से यव शब्द रह गया है माप, बहुत है क्योंकि समाधान में आया और प्रश्न में यहाँ नहीं है। जीव मध्य से नहीं, जीव यव मध्य से। प्राकृत में देखना, देखो ऊपर पूरा ही वाक्य पढ़ेंगे, पिछले पांच पेज से वहां क्या लिखा है, जोग जव मज्जादो एदस्स सुत्तस्स अथे, यानी जोग जव मज्जादो इस सूत्र का अर्थ कहते समय अथे भन्नमादे भन्नमाने यानी अर्थ करते हुए दौवठियणयम द्रव्यार्थिक नय से दौवठियणयम पड़ुच्च यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जोग जव मज्ज सन्निध योग यव मध्य जिसका नाम है यानी योग यव मध्य संज्ञा वाले जीव जव मज्जादो जीव यव मध्य से आगे के उवरिम यानी ऊपर के अद्धानम्मी उन काल में स्थान में अंतोमूर्तद्धम अच्छिदोत्ति किन्न उच्चदे, वहाँ अंतर्मूर्त काल तक रहा ऐसा क्यों नहीं कहा? तो योग यव मध्य और वो है जीव यव मध्य, जीवों में भी वो यव की रचना करके बता रहे हैं, तो समाधान में वो जीव यव मध्य क्या है उसको भी बताएंगे। उसका समाधान, नहीं क्योंकि जीव यव मध्य का आगे का स्थान पिछले स्थान से विशेष अधिक है। योग यव मध्य में हमने क्या देखा था, आगे के स्थान पिछले स्थान से कितने गुणा है या कितने अधिक है, असंख्यात गुणा है। अभी अभी हमने पढ़ा, देखो नीचे ऊपर का बड़ा पैराग्राफ है ना विशेषार्थ वाला, उसमें नीचे से पांचवी यव मध्य से पहले के यानी योग यव मध्य में वो मध्य से पहले के योग स्थान थोड़े होते हैं और आगे के योग स्थान असंख्यात गुणे होते हैं, और जीव यव मध्य में पहले के थोड़े और आगे के विशेष अधिक हैं, वहां असंख्यात गुणा है और यहाँ थोड़े अधिक हैं। अतः वहां अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहना संभव नहीं है। यहाँ तो असंख्यात गुणे हैं तो सब मिलकर वो अंतर्मूर्त हो जाता है, क्योंकि वहां असंख्यात गुण वृद्धि नहीं पाई जाती। अब जीव एवं मध्य के पिछले स्थान से आगे का स्थान विशेष अधिक है, इस बात का कथन करने के लिए, अभी ये सब समझाने के लिए प्ररूपणा, प्रमाण, श्रेणी, अवहार, भागा भाग और अल्प बहुत्व, इन छह अनुयोग द्वारों की योग स्थानों में स्थित जीवों को आधार करके प्ररूपणा करते हैं। अभी जीव यव मध्य की बात क्या है, तभी योग जीव के आधार से तो योग है, तो यहाँ जीव को हम बेस बनाएंगे, आधार बनाएंगे और उनमें ये सब प्ररूपणा करेंगे। विशिष्ट योग स्थानों में जीवों की प्ररूपणा करेंगे तो उसमें उनकी प्ररूपणा बताएंगे, उसका योग की बात कहेंगे, उनका उन जीवों का प्रमाण कहेंगे, उनकी श्रेणी, अवहार, भागा भाग, अल्प बहुत्व, ये सब बातें उन पर घटित करके बताएंगे। वह इस प्रकार है, जघन्य योग स्थान में जीव है, इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक सब योग स्थानों में जीव है, ऐसा सर्वत्र कथन करना चाहिए। ये प्ररूपणा समाप्त हुई। जैसे हमने सत कहा ना, यो है, पहले है सिद्ध करते हैं। ये इतने जो योग स्थान बताए हैं असंख्यात, उन सभी स्थानों में, योग स्थानों में जीव है। अब उनका प्रमाण बताएंगे। पहले बताया ना क्या क्या बातें हमने, पहले प्ररूपणा की यानी वहाँ जीव है ऐसा बताया, दूसरे में प्रमाण बताएंगे, तीसरे में श्रेणी, चौथे में अवहार, पांचवे में भागा भाग और छठे में अल्प बहुत्व। अब ये अपनी प्ररूपणा एक वाली समाप्त हुई। अब दूसरा प्रमाण वाला है, जघन्य योग स्थान में असंख्यात जीव है। प्रमाण बता रहे हैं ना अभी, जघन्य में कितने होंगे, उत्कृष्ट में कितने होंगे, उनका प्रमाण असंख्यात जगत श्रेणियां हैं। देखो हमने देखा था वो द्विंद्रिय वाले वगैरह वहां से शुरू किया था, तो उसमें यह पूरे ही योग स्थान कितने हैं, पूरे योग स्थान जगन्य से उत्कृष्ट तक योग स्थानों की संख्या, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग वाला असंख्यात, सभी योग स्थान कितने हैं जगत श्रेणी के असंख्यात भाग, द्विंद्रिय से लेकर की बात चल रही, द्विंद्रिय से लेकर पर्याप्तों में परिणाम योग स्थानों की बात चल रही है। अब ये जघन्य है वो सब सबको पकड़ा है, परंतु मुझे कंपेयर उसमें नहीं करना है, वहां योग स्थानों की संख्या बताई। अब विशिष्ट योग स्थानों में जीव कितने हैं उसकी बात चल रही है। पहला एक योग स्थान है, उसकी संख्या तो एक है, योग स्थान है पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, इसको योग स्थान कहते हैं। जो पहला वाला योग स्थान है जघन्य में, जघन्य वो उतना योग वाले जीव कितने हैं, अभी जीवों के प्रदेशों की वगैरह बात नहीं, कितने जीवों में वो जघन्य योग पाया जाएगा, तो उसको असंख्यात जगत श्रेणी कहा। फिर से देखो यानी विशिष्ट योग कितने, जैसे हम देखते ना स्कूल में हमको मार्क्स कितने मिलते हैं, एक से लेकर 50 तक, 50 वाले लेंगे या 100 वाले को छोड़ देंगे, तो उसमें कितने अलग अलग मार्क्स हो सकते हैं, किसी को जीरो होगा, किसी को 1, 2, 3, 4, 50 तक हो गए, तो 51 अलग अलग विकल्प हो सकते हैं उसमें। अभी वो आधा मार्क वो नहीं रखेंगे, किसी को फुल मार्क्स ही लेना तो 51 अभी परीक्षा में बैठेंगे 10,000 स्टूडेंट्स, 10,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, किसी को जीरो मार्क है, जीरो मार्क्स वाले कितने हैं उसमें, एक मार्क वाले कितने हैं, ऐसे करते करते 50 मार्क वाले कितने हैं। वैसे यहाँ योग स्थान कितने हैं, तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग इतने हैं, तो उसमें जघन्य योग स्थान वाले जीव कितने हैं, वो जीरो मार्क वाले देखा था ना, वैसे जघन्य में जघन्य योग कितने जीवों को है, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीवों को है। उनका प्रमाण असंख्या जगत श्रेणियां हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट योग स्थान के प्राप्त होने तक सर्वत्र जीवों की संख्या कहनी चाहिए, इसको प्रमाण कहेंगे। ये उत्कृष्ट योग स्थान वाले कितने हैं, वो तो पंचेंद्रियों में होता है, तो पंचेंद्रियों की पूरी संख्या नहीं आएगी, वो भी उत्कृष्ट एक एट अ टाइम कितने हो सकते हैं जीव, उनकी संख्या आएगी वहां पर। जीव है, जीव है, हाँ, असंख्यात असंख्यात जीव एक एक योग स्थान पर है। अभी शंका पूछ रहा है, जघन्य योग स्थान में असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण जीव है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? इस शंका का उत्तर कहते, ये हमने परिणाम योग स्थानों की बात चल रही है अपनी, कहां से शुरू किया था? द्विंद्रिय पर्याप्त। तब ये द्विंद्रिय पर्याप्त नहीं है, सब योग स्थान त्रसों के हैं। यदि वो निगोद वाला लेते तो वहां अनंत जीव है, ऐसा कहना पड़ता है। तो प्रतरांगुल के संख्यात वे भाग का जगत प्रतर में भाग देने पर सब योग स्थानों में स्थित त्रस पर्याप्त जीवों का प्रमाण होता है। अभी योग स्थानों में छोड़ो, क्योंकि सभी जो त्रस जीव है ना, उनके त्रस पर्याप्त उनको ये परिणाम योग स्थान है, तो ये त्रस पर्याप्त जीव कितने हैं? हाँ देखो देखो, जगत प्रतर, ये दो आड़ी लाइन, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल, अंगुल को क्या साइन है? दो, और प्रतरांगुल को चार। जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल, और उसका भी संख्यात भाग, ये है ना, याद है ना, अभी अपनी लैंग्वेज कोड लैंग्वेज जो हमने अर्थ संदृष्टि में पंडित टोडरमल जी ने हमको सिखाया था। तो इसको हम दो आड़ी लाइन, जैसे हम इज इक्वल टू की साइन लिखते हैं, उसका अर्थ होता है जगत प्रतर। तीन आड़ी लाइन लिखेंगे तो लोक होता है, दो आड़ी लाइन से हम जगत प्रतर को कहते हैं, एक ही आड़ी लाइन कहेंगे तो जगत श्रेणी हो जाएगा। ये दो आड़ी लाइन, उसके नीचे लिखना प्रतरांगुल यानी चार, क्योंकि एक अंगुल को हम दो कहते हैं, और उसके नीचे संख्यात की जो चिन्ह है वो जैसे मराठी नृ जैसा दिखता है, नृपति वाला नृ है ना, वैसा दिखता है। तो इतना ये त्रस पर्याप्त जीवों का प्रमाण है। इसमें समस्त योग स्थान, ये सभी योग स्थानों की संख्या हुई, ये सभी योग स्थानों में स्थित जीवों की संख्या हुई, जीवों की संख्या हुई। योग स्थान तो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग है, और यहाँ ये जो कुछ प्रतरांगुल वगैरह से भाग दिया वो जगत प्रतर का असंख्यात भाग किया, जिसका अर्थ होता है असंख्यात जगत श्रेणी। जगत श्रेणी को किसी विशिष्ट से गुणा करो, या जगत प्रतर को किसी से भाग दो, यही संख्या आने वाली है। इसमें समस्त योग स्थान अध्वान के असंख्यात वे भाग प्रमाण तीन जीव गुणिहानियों के काल का भाग देने पर एक मिनट, एदमी तीही जीवगुण हानिनी सवजोग ठाण धाणस असंख्यज्य भागे ही हिदे असंख्यज्य सेडिमेत्ता जीव मध्य जीवा आगच्छन्ति। फिर इसको पढ़ते पूरा वाक्य, फिर हम देखेंगे। इसमें समस्त योग स्थान अध्वान के असंख्यात्वे भाग प्रमाण तीन जीव गुणहानियों के काल का भाग देने पर असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण यव मध्य के जीव आते हैं, क्योंकि सब जीवों को यव मध्य में स्थित जीवों के प्रमाण से करने पर तीन गुणहानियों का जितना काल है उतने यव मध्य प्राप्त होते हैं। अब इसका भी पहले विशेषार्थ पढ़ेंगे हम ये तो बात हमने देखी ना, सभी योग स्थानों में जीव कितने हैं उसकी संख्या लेनी है। वहाँ जो हमने यव मध्य ये आकार किया था वो किस अपेक्षा से किया था, कितने समय तक लगातार वही योग रहता है उसकी अपेक्षा यव मध्य की रचना की थी। अब कौन से स्थान में कितने जीव है उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो हम विशेषार्थ पहले पढ़ते हैं, हाँ इसको भी कर्मकांड से पढ़ेंगे। ये 245-46 गाथा का इन्होंने रेफरेंस दिया है, अभी विशेषार्थ पढ़ेंगे फिर कर्मकांड को भी आधार बनाएंगे। और नहीं समझेंगे तो बाद में समझना ही है, या आज समझेंगे फिर भी दोबारा समझेंगे, अभी 2 महीने का गैप पढ़ने ही वाला है। विशेषार्थ यहाँ त्रस पर्याप्त संबंधी कुल योग स्थानों में अलग अलग और मिलकर कितने जीव है, यानी प्रत्येक स्थान में अलग अलग कितने जीव है वो भी बताया है और सभी मिलकर कितने वो भी बताएं। यह बतलाते हुए सर्वप्रथम जघन्य आदि प्रत्येक योग स्थान के जीवों की संख्या की सिद्धि की गई है। सिद्धि की यानी प्रत्येक स्थान में जीव है यह बताया, और उस पर से त्रस पर्याप्त संबंधी सब योग स्थानों के जीवों की संख्या फलित की गई है। जो अभी हमने देखा था जगत प्रतर को प्रतरांगुल से भाग देना और उसको फिर दोबारा संख्या से भाग देना। अब ये आवली के संख्यात्व भाग का प्रतरांगुल में भाग देने पर जो लब्ध आवे उसका जगत प्रतर में भाग देने से त्रस पर्याप्त राशि प्राप्त होती है, ऐसा नियम है। तो प्रतरांगुल में हमने संख्यात कैसा किया, आवली का संख्यात भाग प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय आवली का संख्यात भाग है, वो संख्यात भाग है ना, वो तो ऊपर चला जाएगा, ये वो संख्यात हो जाएगा जो कुछ है, ये भागाकार का भागाकार का भागाकार है ना, इसलिए उसको तो बीच में आ गया। अब हम पढ़ेंगे पहले। फिर भी यह राशि जगत श्रेणियों की अपेक्षा कितनी जगत श्रेणी प्रमाण है यह देखना है। प्रतरांगुल का कुछ विशिष्ट भाग है, प्रतरांगुल का नहीं, जगत प्रतर को हमने किसी संख्या से भाग दिया था, फिर भी वो कितनी है तो जगत श्रेणी को किसी संख्या से गुणा करेंगे उतनी है, पहले उन्होंने बता ही दिया था असंख्यात जगत श्रेणी है। ऐसा मोटा नियम है कि मोटा नियम ने स्थूल रूप से उन्होंने बता दिया, समस्त त्रस पर्याप्त राशि में 3 जीव गुण हानियों के आयाम भाग देने पर, आयाम का ना यव मध्य के जीव आते हैं, अभी वो उदाहरण देके समझाएंगे, वो जीव गुण हानि देखेंगे अभी। त्रस पर्याप्त राशि में 3 जीव गुणहानियों का जो आयाम है उसका भाग देने पर यव मध्य के जीव आते हैं। हाँ, जीव यव मध्य में उनमें कितने जीव है उसकी बात आएंगे। अभी अंक संदृष्टि की अपेक्षा बताते हैं, उदाहरणार्थ अंक संदृष्टि की अपेक्षा 3 जीव गुणहानियों का काल 12 है और त्रस पर्याप्त राशि का प्रमाण 1422 है। त्रस पर्याप्त राशि ने सभी योग स्थानों में मिलकर कितने जीव है उसकी बात है। हाँ, टोटल त्रस राशि भी मत कहो ना, त्रस पर्याप्त राशि जिनमें परिणाम योग स्थान होता है ऐसे जीव लिए। अतः इस राशि में कुछ कम 12 का 3 जीव गुणाने का भाग देना ना, भाग देने पर यव मध्य के जीवों का प्रमाण 128 होता है, जो अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। कुछ कम 12 लिखा है और वहां 64 लिखा है तो कुछ घटित नहीं होता है, हाँ? ये 711 तो 1422 को हमने 1422 को 4 का भाग दिया तो ये संख्या हो जाती है, हाँ? इसका 128 भाग आना चाहिए,
ये 12 पेक्षा कम है।
अच्छा 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 हाँ वो टोटल 12 की संख्या बताई। हाँ हाँ
कुछ कम
12। हाँ हाँ तो उतना आता है, 11 पॉइंट सम आते हैं, 11.764। हाँ वही बोल रहे वो। हाँ हाँ वही तो 12 से कुछ कम। हाँ वही 711/64 उसका भाग देने पर यवमध्य के जीवों का प्रमाण 128 होता है, जो अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। यानी इतने जीव है वो यवमध्य में, जीवों की अपेक्षा बात, गुणहानि जैसे हम देखते हैं ना, कर्मों की निषेक रचना करते, कहीं भी हम जो कुछ रचना करते तो गुणहानि कहते हैं ना, इतने में वो आधे आधे हो जाते, उसको गुणहानि कहा। देखो ये जघन्य योग स्थान में जीवों की संख्या कुछ है, फिर आगे वाले में कुछ जीव है, आगे वाले में कुछ जीव है, जीवों की संख्या कम योग वाले ज्यादा योग जी हो गए, ज्यादा वाले कम हो गए, ऐसा होगा ना। या ऐसा भी होगा कि जहाँ कम, दोनों और हो सकते हैं, जैसे जैसे हाँ अभी समय नहीं लेना, अभी बीच के कुछ योग स्थानों में जीव कम है या जीव ज्यादा है और दोनों ओर कम है, ऐसा ले सकते हैं। बीच वाले योग स्थानों में ज्यादा है और दोनों ओर कम है, ऐसा भी ले सकते हैं ना, वो तभी तो जीव मध्य कहेंगे उसको, जीव यम मध्य। देखो ये संख्याएं हम पढ़ेंगे ना, फिर मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि देखो असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है, इतने जीवो यव मध्य में है। यहाँ यद्यपि मूल में तीन गुणहानियों के काल का भाग दिला गया है, पर वह स्थूल कथन है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर कुछ कम तीन गुणहानियों के काल का भाग दिलाने पर ही यह संख्या प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इस प्रकार जबकि त्रस पर्याप्त राशि में कुछ कम तीन गुणहानियों के काल का भाग देने पर यवमध्य के जीवों का प्रमाण आता है, तो उस राशि को यवमध्य के जीवों के प्रमाण रूप से करने पर कुछ कम तीन गुणहानियों की जितनी संख्या होगी उतने यवमध्य प्रमाण प्राप्त होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। क्या कहते उस राशि के प्रमाण करने पर, यानी जो हमने 1422 ली संख्या, उसको तीन गुणहानियों के कुछ कम तीन गुणाने के भाग देने पर 128 आया। अभी 128 एक हिस्सा, तो 1422 में कितने हो गए, वो कुछ कम 12, वही तो है, वही बता रहे। उसके प्रमाण से करने पर ने, अभी 128 का एक माप है, एक हमने शलाकार ली, तो उसकी संख्या कितनी आई, जिस संख्या से पहले भाग दिया था वही तो आई। जैसे हमने पहले 100 है उसको 20 से भाग दिया, 5 आए, और अभी 100 को 5 से भाग देंगे तो 20 आ जाएंगे, वैसे उसकी संख्या तीन गुणहानि आएगी, कुछ कम तीन, ये प्राप्त नहीं प्राप्त करना उसको। आठ समय नहीं है यहाँ, समय की कोई अपेक्षा ही नहीं, यवमध्य ने जीवों का प्रमाण ही लेना। बीच के इतने स्थानों के जीवों की संख्या, टोटल स्थानों की जीवों की संख्या कितनी है, 1422, ये 1 2 3 4 हमने इतने सारे स्थान देखे, सबकी मिलकर संख्या कितनी है, 1422। अभी इसके मध्य में कुछ ऐसे स्थान लेना कि जिनकी संख्या कितनी है जीवों की, 128 है। मैक्सिमम योग है वहाँ संख्या कम होगी जीवों की, जीवों की संख्या वाला देखना है, दोनों ओर जीवों की संख्या कम होती जाएगी। मध्यम योग वाले जीव ज्यादा हो गए, इसका अर्थ इतना लेना। ये पूरा पढ़ेंगे ना और ख्याल आ जाएगा, ये प्राप्त होगी जहां हमने करेक्शन किया। अब यह देखना है इस राशि में से जघन्य योग स्थान को प्राप्त कितने जीव है। इसके लिए यह नियम है कि अधस्तन गुणहानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से कुछ कम तीन गुणहानियों के काल को गुणित करने पर जो लब्ध आवे उसका समस्त त्रस पर्याप्त राशि में भाग देने पर जघन्य योग स्थानों के जीवों का प्रमाण आता है। अभी इसको भी वो अंक संदृष्टि की अपेक्षा समझाएंगे। उदाहरणार्थ अधस्तन गुणहानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि तीन है। अधस्त गुणहानि कितनी है? नाना गुणहानि जिसको कहते हैं। नीचे की ओर कितनी है गुणहानि? गुणहानि ने गुणित प्रमाण में हानि। जीवों की संख्या बीच में मैक्सिमम देखी हमने, नीचे घटती जाएगी ऊपर की ओर भी घटती जाएगी। नीचे तीन गुणहानि बताई उन्होंने, तो वहां उनकी संख्या कितनी है वो निकालना है। तो उसके लिए तीन गुणहानि है ना, तो तीन बार दो दो लिखकर आपस में गुणा करना, उसको कहते हैं अन्योन्य अभ्यस्त राशि। हाँ, द्विंद्रिय की ओर के या जघन्य योग वालों की, ऐसा हम कहेंगे। इससे कुछ कम तीन गुणहानियों के काल को गुणित करने पर, यहाँ लिखा है 11.11.7/64, जो कुछ कम तीन गुणहानि हमने पहले 12 में कुछ कम लिखा था उसकी यहाँ बातें, इसको गुणित करने पर यह 88.7/8 प्राप्त होते हैं। और इस सब इसका ये जो राशि प्राप्त हुई, क्या किया हमने, ये जो कुछ कम 12 को 8 से गुणा किया, तीन गुणहानियों से ये उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणा किया। देखो अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितने किसको कहते हैं, जितनी गुणहानियां हैं तो उतनी बार दो दो लिखकर आपस में गुणा करते हैं, उस संख्या को अन्योन्य अभ्यस्त राशि कहते हैं। अब यहाँ नीचे की ओर जघन्य की ओर तीन गुणहानियां हैं, यानी बीच में हमने 128 प्रमाण देखा, वो नीचे की ओर आधा फिर आधा फिर आधा ऐसा होगा तीन बार, तो तीन गुणहानि नीचे है तो उसको वो कुछ कम 12 से 12 को हमने गुणहानि, तीनों का मिलकर गुणहानि का काल 12 से कुछ कम है, उसको अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 से गुणा करेंगे तो 88.78 आ गए। इस राशि का सब पर्याप्त राशि 1422 में भाग देने पर 16 प्राप्त होते हैं। जो सबसे जघन्य त्रस पर्याप्त योग स्थान वाले जीवों का प्रमाण है। देखो 128 उसके नीचे की ओर तीन गुणहानि है, अधस्तन है ना, अभी आड़ा रखेंगे तो ज्यादा ख्याल आएगा। तो ये आधा हुआ, एक बार 64 हुए, दो बार आधा हुआ 32 हुए, और तीन बार आधा हुआ तो सबसे जघन्य ये 16 हो जाएंगे। 16 प्रमाण है ना उसका, तो उन्होंने ये गणित के माध्यम से निकाला। जो सबसे जघन्य त्रस पर्याप्त योग स्थान वाले जीवों का प्रमाण, जीवों की बात है, सबसे उत्कृष्ट त्रस पर्याप्त योग स्थान वाले जीवों का प्रमाण भी इसी प्रकार ले आना चाहिए। अतः यह राशि असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है, क्योंकि जगत प्रतर में जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग का भाग देने पर यह राशि आती है। ये ऊपर की ओर भी ऐसा ही समझना, तो वो कितनी राशि है, तो जगत प्रतर को असंख्यात सा भाग देना या जगत श्रेणी को असंख्यात गुणा करना, उससे ये राशि आती है। अतः संपूर्ण त्रस पर्याप्त राशि असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है, यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। ये कर्मकांड की यहाँ जो गाथा 245-46 दिखाई है, तो इस प्रकार प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई। अब इसमें क्या लिखते हम देखते हैं, 245 गाथा। पर पूरा टेबल है। अच्छा, इसको अभी हम पहले से पढ़ेंगे। का अंतिम वहां से पढ़ना शुरू करते हैं, ये बाद में फिर दोबारा पढ़ेंगे। अभी सुनना, जो अभी हमने देखा था ना, उसी की बात चल रही। पर्याप्त त्रस जीव का परिणाम योग स्थान विषय जीवनी का प्रमाण कहे हैं, और यव नाम का जो अन्य है उसके आकार की ये रचना होती है, इसको जीव यव मध्य कहेंगे। वहां क्या है कि बीच में जितने सारे योग स्थान हैं उसमें बीच में जीवों की संख्या ज्यादा है। हाँ, और दोनों ओर, अभी इसको हमने ऊपर नीचे कहा ना, दोनों ओर जीवों की संख्या कम होती चली जाएगी। बीच वाले जीवों की, मध्यम योग वाले जीव ज्यादा है, और उत्कृष्ट योग वाले भी कम होते चले जाते हैं, और जघन्य योग वाले भी कम होते चले जाते हैं। देखो ठीक है, जीव का प्रमाण रूप यव रचना विषय, बीची में जीव बहुत है, ऊपर व नीचे अनुक्रमते विशेष करी घाटी घाटी जीव। विशेष यानी चय, विशिष्ट जीवों के प्रमाण की भी विशिष्ट हानि होती चली जाएंगे। बीच में हमने 128 देखे, भी ऊपर की ओर भी क्रम से घटते चले जाएंगे, नीचे की ओर भी क्रम से घटते चले जाएंगे। भावार्थ, जैसे यव नामा अन्न बीची में मोटा हो है और ऊपर ही नीचे क्रमतई घटता घटता हो है, बीच में जा मोटा है और ऊपर और नीचे छोटा टेपरिंग, तैसे त्रस पर्याप्त संबंधी परिणाम योग स्थानकनी विषय, अपनी बात तो परिणाम योग स्थानों की चल रही, उसमें यव आकार में जो बीची के स्थानक है तहां जीवनी का प्रमाण बहुत है। पहले हमने काल की अपेक्षा देखी थी, 8 समयों में परिवर्तन करने वाले, अब यहाँ जीवों की संख्या कितनी है उसकी अपेक्षा देखेंगे। बीची का स्थानक के धारक जीव बहुत है, मध्यम योग वाले जीव बहुत है। बहुरी 30 बीची के स्थानक ते ऊपरी के स्थानकनी विषय, उत्कृष्ट की ओर के स्थान विषय व नीचे के स्थानकनी विषय, अनुक्रमते जीवनी का प्रमाण घटता घटता है। 3 स्थानकनी के धारक जीव अनुक्रमते घटते घटते पाइए है, ऐसे यहू यव आकार रचना है। तहां निचली गुणहानि शलाका तई ऊपरी गुणहानि शलाका का प्रमाण किछु अधिक है। अभी ऊपर और निचली हमने देखा, नीचे की ओर 3 बार गुणहानि हुई तो ऊपर की ओर 5 बार हो जाएगी, गुणहानि का प्रमाण कुछ अधिक है। नीचे 64-32-16 तक हुए, ऊपर भी 64-32-16-8-4 ऐसा हो जाएगा, तो ऊपर गुणहानि ज्यादा है, यानी और कम जीव है, एकदम उत्कृष्ट स्थान पर बहुत कम जीव पाए जाएंगे। जैसे वहां हमने देखा था ना, नीचे से हमने द्विंद्रिय की ओर 4-5-6-7-8 काल की अपेक्षा से देखा था, और ऊपर 2 समय वाले तक गए थे। अब यहाँ जीवों की संख्या की अपेक्षा भी देखेंगे तो बीच में जो मध्यम परिणाम वाले जीव बहुत ज्यादा है, नीचे जघन्य योग वाले जीव कम कम होते चले जाते हैं, और ऊपर की ओर भी जीवों की संख्या घटती चली जाती है, परंतु नीचे तो 3 ही बार गुणहानि, यानी 3 गुणहानि हुई, और ऊपर की ओर 5 बार होगी। गुनहानियों का प्रमाण विशेष अधिक है, जीवों का प्रमाण घटता है। गुनहानिया ने वो हानि हो गई ना अभी, उसको गुनहानी शलाका कहते। गुनहानियों की संख्या है गुनहानी शलाका, वो ऊपर की ओर ज्यादा है, नीचे की ओर कम है। सोई कही है यवके आकारी, ये 260 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं लब्धि सार में, कर्मकांड में से। यहाँ लिख के रखना अपना कर्मकांड 259 से शुरू किया था हमने, पेज 259। ये पूर्वार्ध की बात है। हाँ, अभी हम पढ़ते हैं। यव के आकार जीव की संख्या की रचना विषय प्रथम अंकनी की सहनानी करी कथन दिखाइए है। पहले में पहले काल्पनिक संख्याएं लेकर समझाते हैं, तहां द्रव्यतौ त्रस पर्याप्त जीवनी का प्रमाण। द्रव्य किसे कहना, सभी त्रस पर्याप्त जीवों की संख्या को द्रव्य कहेंगे। 114-122 वही संख्या है जो अभी हमने पढ़ी थी। और स्थिति त्रस पर्याप्त जीव संबंधी परिणाम योग स्थानी का प्रमाण। जैसे हम निषेक रचना में भी स्थिति कहते हैं, वैसे कितने योग स्थान है उनको यहाँ स्थिति कही। कोई भी गणित है तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी तो होगी, द्रव्य होगा, स्थिति होगी, गुणहानि होगी, दो गुणहानि होगी, ये जो कुछ संख्या है, अन्योन्य अभ्यस्त राशि है, नाना गुणहानि है, ये जो टर्म है, वो जो संज्ञा है, ये जो नाम देते हैं, तो इन गणितों में वो तो होते ही है। किसको क्या कहना उसको हम देख रहे हैं अभी। यहाँ द्रव्य किसको कहना है, जीवों की संख्या को, और स्थिति कितने किसको कहना है, योग स्थानों की संख्या को। कर्मों में हम स्थिति को, निषेक को स्थिति कहते थे, उदय काल में उदय आने योग्य निषेकों को हम स्थिति, एक एक स्थिति, एक स्थिति, दूसरी स्थिति, ऐसे। और वहां द्रव्य कहते थे सभी कर्म के परमाणुओं की संख्या को। अब यहाँ ये योग का प्रकरण है, यहाँ द्रव्य किस, अभी इस जो जीव यव मध्य रचना में अब हम द्रव्य किसको कह रहे हैं, जीव की संख्या को, और स्थिति किसको कह रहे हैं कि, हाँ, परिणाम योग स्थानों के प्रमाण को, टोटल परिणाम योग स्थान कितने उसको, वे है 32। ये संख्या यहाँ बताई नहीं थी परंतु अभी यहाँ बता रहे, टोटल 32 स्थान है, उन सब स्थानों में मिलकर जीवों की संख्या है 1422। बहुरी गुणहानि आयाम जो एक गुणहानि विषय तीन स्थानकनी का प्रमाण, 104। गुणहानि का प्रमाण फिक्स होता है, जितने स्थान जाने पर जीवों की संख्या आधी हो जाएगी उसको यहाँ गुणहानि कहते हैं। तो प्रति 4 स्थान जाने के बाद वो संख्या घटती आधी आधी होती है, तो एक गुणहानि का प्रमाण है 4। सभी स्थान कितने हैं, 32। अभी नाना गुणहानि तो आप समझ सकते कितनी होगी, 8 होगी। हाँ, 32 टोटल योग स्थान है, प्रति 4 योग स्थानों में गुणहानि होती है। अभी नीचे की ओर भी गुणहानि और ऊपर की ओर भी गुणहानि, बीच की संख्या 128 हम बाद में देखेंगे। नीचे की ओर घटते जाते हैं, नीचे 3 बार गुणहानि और ऊपर 5 बार होगी, 8 बार हो जाएगी ना टोटल। बहुरी ऐसी सर्व गुणहानि जिसको कहते हैं नाना गुणहानि, उसका प्रमाण है 8। इन्हीं को नाना गुणहानि कहिए। तहां निचली नाना गुणहानि का प्रमाण 3। ये बात पहले भी 9वें पुस्तक में भी आई थी कि जीव नाना गुणहानि का प्रमाण वगैरह, फिर भी हमने ऐसे उसको छोड़ दिया था क्योंकि वो यव मध्य की भी बात आई थी, योग यव मध्य, तो अभी उसका हमें सही अर्थ भाषित हो रहा है। देखो नीचे की नाना गुणहानि 3, टोटल 8 है ना, तो ऊपर की है 5। ऐसे 8 नाना गुणहानि जाननी, अब हमें अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालनी, पहले तो ये सब टर्म्स निकालेंगे, बाद में गणित बताएंगे। तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि कैसे निकालते हैं? तो नाना गुणहानी प्रमाण दुआ मांडी, परस्पर गुणे जो प्रमाण होई, तितनी अन्योन्य अभ्यस्त राशि है। अब नीचे की अन्योन्य अभ्यस्त राशि और ऊपर की अलग निकालना, क्यों? कर्म के गणित में तो हम नीचे से ऊपर तक सभी नाना गुणहानि की ओर देखते थे और उसको, परंतु यहाँ दोनों ओर हानि हो रही है और बीच में ज्यादा है, घटता हुआ सेम घटता हुआ प्रमाण और ऊपर भी घटता हुआ है, नीचे से ऊपर तक कंटिन्यूस घटता हुआ होता तो हम वो आठ अन्योन्य अभ्यस्त जो आठ नाना गुणहानि है, आठ बार दो लिखकर हम अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालते। यहाँ दो गुणहानि अलग अलग है, नीचे की ओर की अलग और ऊपर की ओर की अलग, 128 बीच का प्रमाण है, नीचे की ओर भी घटता चला जाएगा, ऊपर की ओर भी घटता चला जाएगा। तो नीचे की अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है? तो नीचे तीन गुणहानि है, तो दो गुना दो आठ है, और ऊपर की अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी आएगी आप ही बताना अभी। हाँ, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, पांच बार 32 है ना। हाँ, तो निचली अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण 8 और ऊपर की अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण 32, सब मिलके 40 हो जाएंगे। हाँ, यदि 8 का हम कंटिन्यूस निकालते तो 8 बार 2 को गुणा करना पड़ता, तो कितना आता? 8 किसका अर्धच्छेद है? 256 का है ना। तो यहाँ तो अलग है ना, नीचे के तीन का अलग निकाला और उसकी एडिशन की है, दोनों का आपस में फिर गुणा नहीं किया है। नीचे के तीन की अन्योन्य अभ्यस्त राशि और ऊपर की 32, 32 प्लस 8 ऐसा लिया, 40 लिया टोटल यहाँ की, यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ यवमध्य रचना है। अभी कुछ मत करो उसको, अन्योन्य अभ्यस्त राशि से अभी कुछ मत करो, उन्होंने अभी बताया नहीं क्या करना है। हाँ, टर्मिनोलॉजी बता रहे थे। तहाँ तिगुणी गुणहानि, एक गुणहानि 4 की है, तिगुणी यानी 12, किछु घाटी यानी कुछ कम, जो अभी हमने देखा था 11/7/64, ये कुछ घाटी 3 गुणहानि, कुछ घाटी 3 गुणहानि, इनकी टर्मिनोलॉजी वही हम भाषा बोलेंगे। उसका भाग द्रव्य को दिए, द्रव्य ने पूरे टोटल सभी योग स्थानों में जीवों की संख्या जो हमने 1422 उसको द्रव्य कहा था, तो द्रव्य को कुछ घाटी 3 गुणहानि का भाग देंगे। जीवनी की संख्या यव आकार के मध्य होई, भाग देने पर मध्य में वो जीवों की संख्या जो यव मध्य में 128 आती है। सो गुणहानि आयाम का प्रमाण 4, ताको तिगुणा किए 12, किंचित ऊन कहने करी यामे सो 1/64 भागनी में जे 57 भाग ते घटाइए। और ये सब उदाहरण कैसे करना वो बताते हैं, तो कहते हैं इसका भाग देने पर 128 आया, अभी हमने देखा था उसमें। सो यह सो जीव यव आकार रचना विषय मध्य प्रमाण जानना, जो जीव यव मध्य रचना है उसमें ये सेंटर है 128, ये जो हमने मिला था ये 128, ये यव मध्य का ये मध्य है। यवाकार जो रचना होगी जीवों की संख्या की, ये उसका मिनिमम, ये बीच वाला पॉइंट है, मैक्सिमम वाला। ताताई मध्य विषय जीव बहुत है ऐसे कहा, बहुरीति ही मध्यतय ऊपरी, मध्य के ऊपर वा नीचे गुणहानि के जे निषेक, अभी उनको निषेक कहेंगे, 4 निषेकों की एक गुणहानि, वहां निषेकों में हम परमाणुओं के समूह को निषेक कहा था। हाँ, अब यहाँ जीवों की बात है, इतने इतने योग स्थानों को हम कहेंगे, एक योग स्थान को एक निषेक कहेंगे, वहां कहा था ना 4 योग स्थानों को हमने एक गुनाह नहीं कहा था वैसे। तो जितने निषेक तीन विषय, अपनी अपनी गुनाहानी विषय जो विशेष का प्रमाण, ये अभी पूरा ही बाकी गणित तो वो जैसे हमने कर्म में निषेक रचना में देखा था वैसा ही होता है। देखो अभी हमने देखा था ये चार निषेकों की एक गुनाहानी, फिर और चार निषेक जाएंगे तो दूसरी गुनाहानी, और चार निषेक जाएंगे तो तीसरी गुनाहानी। तो गुनाहानी का अर्थ ही होता है गुणित प्रमाण में हानि। तो ये जो हानि है वो क्रम से उतनी उतनी हानि होगी। तो उस कितनी हानि होगी, हानि का प्रमाण प्रति निषेक कितना है, उसको चय कहेंगे या विशेष कहेंगे। तो यहाँ विशेष लिखा है। तो अपनी अपनी गुनहानी विषय जो विशेष का प्रमाण, तितना तितना घाटी क्रमते ही जाना। जैसे हमने पहली गुनहानी में जो चय का प्रमाण होगा, अभी यहाँ 128 था ना, 128 से संख्या 64 पर आ गई, तो प्रति निषेक कितनी कितनी हानि हुई, 16 घटे 16 घटे 16 घटे, चार बार 16 घटे ना, तो 64 घटकर 64 हो गए। तो यहाँ प्रति निषेक 16 16 की हानि, तो यहाँ 16 चय है। दूसरे गुणहानि में क्या है, 64 से 32 हो गए, तो प्रति निषेक हानि कितनी हुई, 8 की हुई। तो यहाँ का चय 8 है। गुणहानि प्रति चय का प्रमाण भी आधा आधा होता जाता है, ये हमने पहले भी कुछ सीखा था। आगे 32 से अब ये 16 हो जाएगा, तो चार में मिलकर 16 घटे, तो एक एक निषेक में कितने घटे, 4 घटे। तो यहाँ भी ये यहाँ का 16 चय है, यहाँ का 8 चय है, और यहाँ का 4 चय है। चय कहो या विशेष कहो एक ही बात है। हाँ। तो कहते हैं कि मध्य से ऊपर और नीचे जो गुणहानि है उनके जो निषेक है, वो अपने अपने गुणहानि में जो वहाँ वहाँ का चय का प्रमाण है, उतना उतना घाटी क्रम से उन निषेकों में संख्या जानना। यानी यहाँ के इतने योग स्थान जाने पर आधा हुआ, तो प्रत्येक योग स्थान में जीवों की संख्या 16 से घटी। यहाँ 128 जीव थे, उसके नीचे के दोनों ओर के योग स्थानों में जीवों की संख्या 16 से घटी, यानी 112 दोनों ओर हो जाएंगे, ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी। ये जैसे नीचे भी 64 32 और 16 देखे, वैसे ऊपर भी 64 32 16, ऊपर तो 5 गुनहानि है, फिर 8 और 4 तक भी चला जाएगा। तो प्रति निषेक यानी प्रति योग स्थान, निषेक यहाँ योग स्थान को एक निषेक कहा, क्योंकि टोटल योग स्थान हमने 32 ही देखे थे। मूल में असंख्यात है, परंतु अब समझे कैसे असंख्यात की भाषा, तो यहाँ 4 8 ऐसे छोटे छोटे संख्या लेकर समझाते हैं हमको। इतनी बात समझ में आ रही है ना, प्रति निषेक उसकी संख्या घटती चली जाती है। सो विशेष का प्रमाण कितना है, ये चय का प्रमाण कैसे निकालना, अपनी अपनी गुनहानी का पहला निषेक को, अपनी गुनहानी का जो पहला निषेक है उसको, दूना गुनहानी का आयाम प्रमाण जो दो गुनहानी, गुनहानियाँ अपनी 4 की है, दो गुनहानि का प्रमाण है 8, ताका भाग दिए जो प्रमाण होई। अभी हमारे यहाँ ये 128 दोनों ओर का पहला निषेक ही समझेंगे हम, क्योंकि वो मध्य में है। तो 128 को हम दो गुनहानि 8 का भाग देंगे तो 16 आएंगे, 16 8 28 ऐसे न। अथवा अंत का निषेक को एक अधिक गुनहानि का आयाम का भाग दिए जो प्रमाण होई, अंत का निषेक को, ये अंत का निषेक है 64, इसके अंत का निषेक है 64, उसको एक अधिक गुनहानि आयाम का भाग दिए जो प्रमाण होई, नीचे की ओर, जो प्रमाण होई सो विशेष का प्रमाण जाना। एक मिनट, गुनहानि का आया मैंने 4, अच्छा अच्छा गुणहानि का आयाम का भाग दिए, तीन गुणहानि गुणहानि आयाम का भाग दे, एक अधिक क्यों किया? क्षय का प्रमाण आता है, ठीक है। ताते निचली व ऊपरली गुणहानि का द्रव्य व विशेष आधा आधा अनुक्रम ते जानना, यानी ये जो नीचे की ओर भी और ऊपर की ओर भी, यहाँ भी 64, 8, 4 ऐसा क्षय का प्रमाण, विशेष का प्रमाण, और ऊपर की ओर भी वो 16, 8, 4, 2, 1 इस तरह से क्षय का प्रमाण होगा। यही बात फिर हम आने पर करेंगे दोबारा। जावानी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। विनोद भाई